15 सितंबर गुरुवार का नमस्कार। भारत फैसल मोहम्मद अली से। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में सत्ता संघर्ष जारी, आज लखनऊ में संसदीय बोर्ड की बैठक। इस बीच मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव ने कहा,
उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। नेताजी जो भी निर्णय लेंगे वो हम नेताजी के साथ हैं और बखूबी संगठन का काम देखेंगे।
नेपाल के प्रधानमंत्री आज से भारत के दौरे पर, होटल में कमरा बुक कराने की कोशिश करने वाले युवाओं की मुश्किल।
न्यू गोरो होटल, यू नो
जब आप किसी होटल में जाते हैं तो मैनेजर की नजर बता देती है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है।
अब एक कंपनी दिलवा रही है कुछ घंटों के लिए कमरे, होगी अखबारों की समीक्षा भी सब आगे, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। समाजवादी पार्टी में सत्ता के वर्चस्व को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जारी कलह का निपटारा अब पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव करेंगे। इस मसले को सुलझाने के लिए लखनऊ में आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले यूपी के कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी से हटाए गए शिवपाल यादव ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह से कल दिल्ली में मुलाकात की, जहां दोनों के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत हुई। शिवपाल यादव के साथ चल रहे झगड़े के सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल कहा था कि ये परिवार का नहीं सरकार का मामला है। ब्राजील में संघीय अभियोजकों ने एक न्यायाधीश से पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनेशियो लुला डी सिल्वा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने को कहा है। अभियोजकों ने लुला को सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार का सरगना बताया है। लुला और उनकी पत्नी पर ग्वारूज में समुद्र किनारे आलिशान पेंट हाउस के स्वामित्व की जानकारी छिपाने के आरोप हैं। इस मकान की कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि लुला ने इस मकान के मालिक होने से इनकार किया है और इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया है। ब्राजील के कानून के मुताबिक अगले कुछ दिनों में न्यायाधीश ये तय करेंगे कि इन आरोपों के आधार पर औपचारिक तौर पर लुला पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। अमेरिका के विदेश विभाग का कहना है कि वाशिंगटन और मॉस्को सीरिया में संघर्ष विराम को अगले 48 घंटों तक बढ़ाए जाने पर सहमत हो गए हैं। युद्ध विराम के लिए दोनों के बीच हुआ समझौता 2 दिन पहले ही लागू हुआ है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि कई उल्लंघनों के बावजूद इस दौरान किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र अब तक वहां कोई मानवीय मदद नहीं पहुंचा पाया है, खासतौर पर विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेपो में। संयुक्त राष्ट्र सचिव बान की मून ने रूस और अमेरिका से अपील की है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सुनिश्चित करें कि जरूरतमंद लोगों तक मानवीय मदद पहुंच सके। ये सभी 20 ट्रक तैयार खड़े हैं और इन्हें आज ही राहत सामग्री पहुंचा देनी थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि सभी जरूरी तैयारियां और सुरक्षा इंतजाम मुहैया कराए जाएं ताकि ये नियंत्रण रेखा वाले इलाके को पार कर सकें। मैं रूस की सरकार से अपील करता हूं कि वे सीरिया की सरकार पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और अमेरिका से अपील है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सीरियाई सशस्त्र समूह भी पूरी तरह सहयोग दें। ये थे बान की मून के शब्द। खबरें हैं कि सीरियाई सरकारी बल और विद्रोही लड़ाके एक अति महत्वपूर्ण सड़क मार्ग से हटने की तैयारी कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण सूडान के एक बड़े अखबार नेशन मिरर के संपादक का कहना है कि सरकार ने अखबार को बंद करने का आदेश जारी किया है। मंगलवार को अखबार में उच्च अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ था और उसके ठीक एक दिन बाद सरकार ने ये आदेश जारी किया है। बीबीसी समाचार।
गुरुवार की सुबह हमारे पहले कार्यक्रम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी यानी एक तरह से मुलायम सिंह यादव का परिवार के हैं, उसके भीतर सत्ता की उठापटक जारी है। चचा भतीजा के बीच जो सत्ता संघर्ष शुरू हुआ है उसका निपटारा बुधवार को नहीं हो सका। पार्टी का एक धड़ा मुलायम सिंह के पास दिल्ली में डटा है तो दूसरा लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास। आज पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव भी लखनऊ पहुँच रहे हैं और अखिलेश यादव से बात करेंगे। इस बीच पार्टी के भीतर चल रहे विवाद में अमर सिंह की भूमिका और उनके भविष्य को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 3 अक्टूबर से अपनी चुनावी रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी में चल रही राजनीतिक और पारिवारिक कलह की चर्चा का केंद्र कल दिल्ली में था। दोपहर में ही पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े भाई मुलायम सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे। तो दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। उनसे पहले बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह से वार्ता कर चुके थे। हालांकि मंत्रिमंडल से शिवपाल के इस्तीफे की तभी से चर्चा थी जब से उनके कई विभाग छीन लिए गए थे, लेकिन शिवपाल ने इस बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा। हाँ, उनकी बातों से ये जरूर लगा कि अब वो मंत्री बने रहने की बजाय संगठन के काम में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे।
तो चुनाव है नजदीक, चुनाव में जाना है तो निश्चित उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है, और जो भी आगे नेताजी जो भी निर्णय लेंगे वो हम नेताजी के साथ हैं और बखूबी संगठन का काम देखेंगे।
उधर बुधवार सुबह शिवपाल यादव के साथ चल रहे झगड़े के सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना था कि ये परिवार का नहीं सरकार का मामला है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा कि कुछ बाहरी लोग सरकार और पार्टी के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पार्टी नेता अमर सिंह ने इस बारे में खुद ही सफाई दे दी।
अगर मैं बाहरी व्यक्ति हूँ तो उनका विवाह उनके पिता ने नहीं, मैंने करवाया। दिल्ली का उनके विवाह का रिसेप्शन पूरा मैंने आयोजित किया, लखनऊ का मैंने आयोजित किया। उनको साथ लेकर के ऑस्ट्रेलिया पढ़ाने ले गया, मुझे नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है कि वो हमारे बच्चे की तरह हैं। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी।
हालांकि जानकारों का कहना है कि इस विवाद को शायद संसदीय बोर्ड की बैठक में सुलझाया जाए। जाहिर है अंतिम फैसला मुलायम सिंह ही करेंगे और उसे अखिलेश और शिवपाल दोनों को ही मानना पड़ेगा। इटावा में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शाक्य कहते हैं कि फैसला कुछ बड़ा और चौंकाने वाला भी आ सकता है।
अगले जो 24 घंटे हैं वो बड़े ही संकट वाले माने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसे ही बातें सामने निकल करके आई हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, वो किसी ऐसे राजनेता के ऊपर हो सकती है। जैसा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि बाहरी व्यक्तियों का दखल सरकार और परिवार में किसी भी शक्ल सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अब वो बाहरी व्यक्ति कौन है इसको बड़ी आसानी से प्रदेश के लोग उसको समझ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उसको आसानी से आंक सकते हैं।
इस बीच आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। समझा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद लेने के बाद अखिलेश यादव को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है, जो कि अभी शिवपाल के पास है। इस बीच पारिवारिक कलह को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी रथ यात्रा का भी ऐलान कर दिया है, जो 3 अक्टूबर से निकलेगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
अब इस पूरे मामले को कई तरह से देखा जा रहा है। चुनाव से बिल्कुल पहले ये मुलायम सिंह यादव के लिए एक मुश्किल घड़ी बताई जा रही है। एक तरफ यानी कि परिवार का झगड़ा बिल्कुल सड़कों पे निकल के आ गया है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से ये मौका होगा उनके लिए हालात सुधारने का चुनाव के साल से पहले। और अब रुख करते हैं बिहार का, जहाँ सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में अब जांच जो है केंद्रीय जांच एजेंसी CBI करेगी। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। उधर पत्रकार की पत्नी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद के बेटे हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर भूमिका की जाँच करने का आग्रह किया है। इन दोनों की तस्वीर साजिशकर्ता कैफ के साथ मीडिया में आने के बाद बिहार में सियासी भूचाल सा आया हुआ है। नीरज सहाय की रिपोर्ट।
सीवान के व्यवसायी चंदा बाबू के तीसरे पुत्र राजीव रोशन की हत्या के मामले में अभियुक्त पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई के बाद से नीतीश सरकार पर विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच रिहाई से आहत चंदा बाबू ने हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को तैयार कर लिया है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण याचिका आज दाखिल करेंगे। 3 बेटों की निर्मम हत्या और अपराधियों को सजा न मिलने से आहत चंदा बाबू अपना दुख कुछ इस तरह बयां करते हैं।
रोशन को मरवा दिया तो उसी समय समझे हम केस सब खा गया। पहले ही वाले केस में उसको अगर वो होता तो फांसी की सजा उसकी होती, लेकिन यहाँ तो उम्र कैद की सजा हुई और पटना जाने के बाद जो है हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दिया
गया। उसके बाद अपने देश पर निकल जाएंगे तो गलत खतरा होगा, हम लोग के जीवन का खतरा भी होगा। अब ईश्वर जाने पर बेटा, अब ईश्वर पर भरोसा है, जो हम लोग गतिविधि होगा।
करीब 4 महीने पहले पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शहाबुद्दीन के शार्प शूटर कैफ का नाम भी आया था। दिवंगत पत्रकार की पत्नी आशा रंजन ने इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बुधवार को खटखटाया है। इस तरह शहाबुद्दीन और उनके शूटर से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। उधर पत्रकार हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की राज्य सरकार के अनुरोध को केंद्र की एनडीए सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कैफ की तस्वीर पहले शहाबुद्दीन के साथ और बाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ मीडिया में आई थी। इस मुद्दे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि
बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभानअल्लाह। यानी बड़े मियां जब लालू यादव वो शहाबुद्दीन के साथ में घूम सकते हैं, ये तो मोहम्मद कैफ तो छोटा मोटा अपराधी है, ये तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का चेला है। भाई वो जो बयान दे कि मेरा संबंध नहीं है, कि सिवान के अंदर जब शहाबुद्दीन लौट कर आए तो चंदा बाबू के घर के सामने पटाखे छोड़े, जिस चंदा बाबू के तीन तीन बेटों को शहाबुद्दीन ने मार दिया, उनके लोगों ने मार दिया। और मैं दाद देना चाहूंगा चंदा बाबू का, जिन्होंने हिम्मत के साथ तीन तीन बेटों के मरने के बाद भी अपनी बेटों की शहादत की लड़ाई लड़ रहा है, मजबूती के साथ मुकदमा लड़ रहा है।
इन सारे घटनाक्रम से बिहार में कानून का राज कायम करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्षमता और उनकी राजनीतिक मजबूरियों पर सवाल उठने लगे हैं। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब बात करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें ज्यादातर लोग प्रचंड के नाम से जानते हैं, आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। नेपाल के नए संविधान के लागू होने के बाद मधेशियों के आंदोलन के बाद भारत और नेपाल के बीच तलखी बनी रही। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा माना जाता रहा। अब प्रचंड ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुना है। इस पर हमारी सहयोगी ने बात की बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता सुरेंद्र फोयाल से और पूछा कि किस तरह की उम्मीदें लेकर प्रचंड भारत तशरीफ ला रहे हैं।
वो जब प्रधानमंत्री चुने गए कुछ हफ्ते पहले तो मोदी ने उनको बधाई देके भारत भ्रमण करने का दिया था आमंत्रण, तो वो समय मिलाकर अब भारत यात्रा पर आज आ रहे हैं। और उनका मुख्य योजना नेपाल और भारत के संबंध में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर करके संबंध को फिर सही ट्रैक पे लाना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रचंड ने जितने भी नेपाल और भारत के बीच में समझदारी हुई है पिछले कुछ साल पहले, तो वो समझदारी के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि 2500 जल विद्युत आयोजना है पश्चिम नेपाल और भारत की सीमा में महाकाली नदी में, वो बहुत बड़ा जल विद्युत आयोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उससे सिंचाई भी हो सकती है भारत और नेपाल की हजारों हेक्टर जमीन का।
क्या वजह है कि प्रचंड जो है उन्होंने पहले भारत आना चुना?
नेपाल के अधिकांश प्रधानमंत्री जो जब चुने जाते हैं तो विदेश भ्रमण में सबसे पहले वो भारत ही जाते हैं, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तीन तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है, और भारत से बहुत पुराना संबंध है और भागीदारी भी है बहुत हिसाब से, खुला सीमाना है जो दो देश के बीच में। इससे पहले भी केपी ओली भारत आया, सुशील कोइराला भी भारत आया, तो अधिकांश प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि नेपाल का भारत और चीन से सामुद्रिक का संबंध है, भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी है तो चीन भी महत्वपूर्ण पड़ोसी है, दोनों से सामुद्रिक का अच्छा संबंध रखना नेपाल का दायित्व होगा, नेपाल के हित में होगा। प्रचंड इससे अगली बार प्रधानमंत्री हुए थे सन 2008 में, 8 साल पहले, उस वक्त बीजिंग में ओलंपिक हो रहा था, बीजिंग ओलंपिक के दौरान वो किसी वजह से ओलंपिक के लिए बीजिंग चले गए, तो वापस आया तो उन्होंने बताया कि औपचारिक भ्रमण के लिए तो मैं फिर भारत ही जाऊंगा पहली बार।
ये थे सुरेंद्र फोयाल, उनसे बात की थी हरिता कांडपाल ने। 2008 में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद प्रचंड बीजिंग गए थे, यानी कि चीन, जिसको लेकर भारत में थोड़ी भारत की तरफ से नाराजगी थी। नेपाल एक ऐसा देश है जो चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ, यानी कि एक तरफ उसकी चीन है, दूसरी तरफ भारत और दूसरे देश हैं, तो उसको संबंध दोनों से बेहतर बना के रखना है। इस बार प्रचंड आ रहे हैं, हालांकि आज वो पहुँच रहे हैं लेकिन उनका ऑफिशियल कार्यक्रम जो है वो शुक्रवार और शनिवार को होगा, और रविवार को वो वापस जा रहे हैं। 100 लोगों का दल लेकर वो आ रहे हैं इस बार अपने साथ। और पिछली बार अब थोड़ी देर पहले ही हमें भेजी हमारे नेपाली सेवा के संवाददाता सुरेंद्र फोयाल ने उनकी एक छोटी सी बातचीत प्रचंड के साथ।
फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही विजिटेड नेपाल एंड ही मेक ए स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट, सिचुएशन वाज वेरी मच इनकरेजिंग। I want to revive that spirit again, and I will request Prime Minister Modi to create that atmosphere.
Surendra Fayal ने उनसे पूछा था कि जब वो जा रहे हैं भारत तो उनकी क्या उम्मीदें हैं, तो उस पर प्रचंड का कहना था कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जब नेपाल आए थे तो उन्होंने संसद में भाषण दिया था जो काफ़ी उत्साहित करने वाला था, और मैं चाहता हूं कि वो भावना बनी रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करना चाहता हूं कि उसी उत्साह को कायम रखें, और नेपाल के लोगों में उनको बयान को लेकर काफ़ी आशा है। उसके बाद सुरेंद्र फयाल ने उनसे पूछा कि आपने हाल में ही कहा था कि आप में और प्रधानमंत्री मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनमें काफ़ी समानता है। इसके जवाब में प्रचंड ने कहा कि देश और लोगों के हित के लिए खतरे उठाना ये हम दोनों में एक तरह से है, हालांकि हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन खतरे उठाकर आगे बढ़ना ही हमें समान बनाता है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब कुछ खबर विदेश से। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि म्यांमार पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंधों को जल्दी हटा लिया जाएगा क्योंकि वहां एक नागरिक सरकार ने सत्ता संभाल ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि म्यांमार में लोकतांत्रिक विकास अभी अधूरा है। म्यांमार की सरकार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू ची के व्हाइट हाउस के दौरे के मौके पर ओबामा ने ये बयान दिया। आंग सान सू ची ने अमरीका के प्रतिबंध हटाने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे देश में एकजुटता लाने में मदद मिलेगी। म्यांमार की सैन्य सरकार पर प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन 5 साल पहले इनमें ढील दी जाने लगी थी जब सेना ने सत्ता के कामकाज को धीरे धीरे नागरिक सरकार को सौंपने का फैसला किया था। सुनिए एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमरीका म्यांमार पर लंबे समय से लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार है। ये खबर उस समय आई जब म्यांमार सरकार में सबसे बड़ी हैसियत रखने वाली नेता आंग सान सू ची अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन पहुंची। म्यांमार साल 1979 में मानवाधिकार हनन के मामलों के कारण गरीब देशों को मिलने वाले व्यापारिक फायदों से बेदखल हो गया। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि म्यांमार को अब बेहतर सीमा शुल्क का फायदा मिलना चाहिए क्योंकि वो दशकों से जारी सैन्य शासन से बाहर निकल रहा है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा ने कहा कि प्रतिबंध हटाना बर्मा के लोगों के लिए तोहफा होगा। ओबामा ने कहा,
The United States is now prepared to lift sanctions that we have imposed.
अमेरिका उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए अब तैयार है जो हमने बर्मा पर कुछ समय से लगा रखे थे। ये इस फैसले का सही वक्त है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि व्यापार करने के नए तरीके और एक नई सरकार से बर्मा के लोगों को फायदा हो। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। उन्होंने कल अमरीकी संसद कांग्रेस को लिखे एक पत्र में इस कदम की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने म्यांमार का नाम वरीयता की सामान्यकृत प्रणाली की उस सूची में जोड़ दिया है जिसमें शामिल कुछ देशों को उच्च आयात शुल्क से छूट दी जाती है। हालांकि कई कंपनियों को अब इस कम शुल्क का फायदा मिलेगा लेकिन कुछ प्रतिबंध अब भी लागू रहेंगे। इनमें काली सूची में डाली गई कम से कम 100 कंपनियां और व्यक्ति शामिल हैं जिनका पूर्व सैन्य शासकों के साथ संबंध है। साथ ही जेड और माणिक का व्यापार भी प्रतिबंधित रहेगा। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि कुछ प्रतिबंध जल्द ही हटा लिए जाएंगे लेकिन उन्होंने इससे संबंधित ज्यादा ब्यौरे नहीं दिए। ओबामा ने म्यांमार में शांति बहाल करने की कोशिशों और देश की असीमित क्षमताओं की तारीफ की। म्यांमार की सैन्य सरकार पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन 5 साल पहले इनमें ढील दी जाने लगी जब सेना ने सत्ता सौंपना शुरू किया था। सूची ने अमरीकी संसद से अपील की कि देश पर लगे बाकी सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएं। सूची ने कहा कि प्रतिबंधों को हटाने से निवेश के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा,
We think that the time has now come to remove all the sanctions that hurt us.
हमें लगता है कि समय आ गया है कि वे सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएं जिनसे हमें आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि अब हमारा देश उस स्थिति में है और उन सभी लोगों के लिए खुला है जिनकी हमारे आर्थिक उद्यमों में शामिल होने की रुचि है। हम आप सभी को हमारे देश आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप वहां आकर देखें कि आपको वहां क्यों और कैसे निवेश करना चाहिए जिससे आपको भी लाभ हो जितना हमें फायदा मिलेगा। आंग सान सू ची के शब्द। सू ची की अमरीका यात्रा से पहले ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था ने कहा कि इन प्रतिबंधों से सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया था और इन्हें तब तक पूरी तरह नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक लोकतांत्रिक परिवर्तन पूरी तरह से ना हो जाए और भविष्य में इसके फिर से पलटने की गुंजाइश ना रहे। आंग सान सू ची म्यांमार में विपक्ष की नेता थी जिन्हें 15 सालों तक नजरबंद रखा गया था। पिछले साल नवम्बर में हुए संसदीय चुनाव में सू ची की अगुवाई में विपक्षी दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर एक नागरिक सरकार बनाई और देश में पिछले 25 साल से चल रहा सेना का शासन खत्म हुआ। म्यांमार के संविधान के मुताबिक सूची राष्ट्रपति नहीं बन सकती, लेकिन नई सरकार में उनके लिए स्टेट काउंसिलर का एक नया पद बनाया गया और उन्हें देश की सबसे बड़ी नेता माना जाता है।
और ये सुना रहे थे अमर शर्मा रिपोर्ट। अब अमर शर्मा से ही जानते हैं कि अखबारों में क्या क्या छपा। अमर, ये बताइए कि आज अखबार क्या कह रहे हैं।
जी फैसल भाई, सभी अखबारों में, हिंदी के तमाम अखबारों और अंग्रेजी के अखबारों ने आज जो अखिलेश और शिवपाल के बीच में जो सत्ता संघर्ष को लेकर
रक्षा की जंग
जारी है, उसी को उन्होंने अपनी पहली खबर बनाया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि अखिलेश शिवपाल बोले नेताजी का हर फैसला मंजूर। वहीं अमर उजाला ने लिखा है कि झगड़ा सरकार का परिवार का नहीं, बाहरी दखल देंगे तो पार्टी कैसे चलेगी, जो अखिलेश यादव ने कल बयान दिया था। इसी को तमाम अखबारों ने
तरफ से दरअसल बयान आ रहे हैं। शिवपाल ने यहाँ अपनी तरफ से बयान दिया और उन्होंने भी कि हाँ, ये झगड़ा जो है वो सत्ता संघर्ष का नहीं है, ये सफाई दे रहे हैं।
जी जी जी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी पहली खबर बनाया है कि चिकनगुनिया से मरने वाली कुल संख्या 10 हो गई है
दिल्ली में। जी,
और इसको लेकर और भी दूसरे अखबारों ने भी कहा है कि सरकार ने इस पर एक टीम बनाई है। नड्डा ने कहा है, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि नड्डा कॉल्स क्राइसिस मीटिंग,
मतलब जो केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्री हैं,
स्वास्थ्य मंत्री,
उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है समस्या से निपटने के लिए। और एक फोटो इन्होंने छापा है कि दिल्ली के जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा जल मंत्री और बीजेपी के मनोज तिवारी, दोनों एक साथ में, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री और दिल्ली में भाजपा के एक सांसद मनोज तिवारी, दोनों एक साथ हैं और ये फॉगिंग कर रहे हैं। ये फोटो मैंने, ये उस दुर्दशा को दिखाता है कि सरकारी महकमा के जो अधिकारी हैं, जो काम उन्हें करना चाहिए था, वो ये लोग क्या एक दिन उतर कर उस काम को पूरा कर पाएंगे? ये प्रतीकात्मक तौर पर क्यों उतरे हैं? ये एक विफल स्थिति को दिखा रहा दिल्ली में। एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापी है कि गोविंद पंसारे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे गोविंद पंसारे, और इनकी सनातन संस्था पर जो आरोप लगे हैं कि जो उसकी जांच हो रही है उनकी हत्या के सिलसिले में, पुलिस ने वहां पर उनके सीजोफ्रेनिया और मानसिक रोगों के इलाज के लिए जो दवाएं होती हैं, इनके पर्चे पुलिस ने वहां से बरामद किए। सनातन संस्था नाम की जो ये संस्था है, जो जिस पर आरोप लगे हैं इस पर।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब आज की सुनते हैं एक दिव्या आर्य की विशेष रिपोर्ट। विदेशी सभ्यता से अलग भारत में शादी से पहले यौन संबंध बनाने को सही नहीं माना जाता। अभी भी युवक और युवतियों को इसके लिए तरह तरह के तरीके ढूंढने पड़ते हैं अगर वो इस चाहते हैं एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाना। युवा लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के साथ ज़्यादातर रहते हैं और ऐसा करने के लिए जगह और मौके की तलाश बहुत ही मुश्किल होती है उनके लिए। अब एक नई कंपनी ने ऐसी ही गैर शादीशुदा जोड़ों के लिए होटल में कमरे बुक करने की सुविधा शुरू करवाई है। यह सुविधा घंटों के रेट पे मिलती है। मुंबई से बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य की रिपोर्ट।
मुंबई में समंदर किनारे ये इलाका लवर्स पॉइंट कहलाता है। रोज यहाँ जवान लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ वक्त बिताने आते हैं, लेकिन ये जगह सबसे बेहतर तो नहीं। खुली हवा में ट्रैफिक का शोर और खतरा ये कि कोई परिवार को जानने वाला उन्हें देख ना ले।
पर ऐसी जगहों और पार्क्स के अलावा युवा लड़के लड़कियों के पास खास विकल्प नहीं है। शादी से पहले शारीरिक संबंध गलत माना जाता है, यानी घर में बताकर मिलना या घर के अंदर मिलना व्यावहारिक नहीं है। और होटल में कमरा बुक करने का अनुभव परेशानी भरा हो सकता है। पहचान छुपाए जाने की शर्त पर इस लड़की ने मुझे बताया,
न्यू गोरो होटल, यू नो व्हेन समवन,
जब आप किसी होटल में जाते हैं तो मैनेजर की नज़र बता देती है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको खुद से नफरत सी होने लगती है, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहिए।
इस लड़की ने आखिरकार स्टे अंकल नाम की कंपनी की मदद ली। संचित सेठी ने 7 महीने पहले स्टे अंकल की शुरुआत की। उन्होंने होटलों के साथ करार कर एक वेबसाइट बनाई, जिस पर लॉगिन कर लड़के लड़कियां कुछ घंटे के लिए इन होटलों का कमरा बुक कर सकते हैं। अगर लड़का लड़की दोनों लोकल सरकारी आईडी दिखाएं तो ये बिल्कुल कानूनी है, पर संचित के अनुभव में होटल अब भी इसमें शामिल होने से कतराते हैं।
We still face difficulties in actually, you know, making hotels start accepting couples.
हमें अब भी होटलों को समझाने में बहुत दिक्कत होती है। आप 10 होटलों से बात करें तो आखिर में 2 या 3 ही मानते हैं, यानी 70-80% अब भी पीछे हट रहे हैं, और इसकी वजह है डर, समाज से भी और पुलिस से भी।
पिछले साल ही मुंबई के मड आइलैंड में पुलिस ने एक होटल में करीब 20 जोड़ों को गिरफ्तार किया था। सोशल मीडिया और शहर की कई बड़ी हस्तियों की ओर से निंदा होने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया और पुलिस कमिश्नर को माफी भी मांगनी पड़ी। पर सुरक्षा अब भी बड़ा मुद्दा है। पर जो होटल इस डर को किनारे कर कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उनके मुताबिक ये मुनाफे का सौदा है। ये जोड़ों को जब कमरा देते हैं तो होटल के आम रेट से 40% कम रेट पर 10 घंटे की शिफ्ट में देते हैं। मुंबई के काल रेजिडेंसी होटल के मार्केटिंग मैनेजर पीटर जोसेफ ने बताया,
इन्वेंटरी किस तरह से फिलअप हो रहा है। जैसे छोटे छोटे प्रॉपर्टी होते हैं 40 रूम 50 रूम की, उसमें अगर आपके डेली के रोजाना आपको 8-10-15 रूम आपके खाली जा रहे हैं, स्टे अंकल के जरिए आपको उस वही चीज़ आप 15 रूम अगर पूरे स्टे अंकल ने सेल कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 50% आपका लॉस कम हो रहा है। आपके पास में कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू है, आप फिलअप कर रहे हो, आप भर रहे हो आपका होटल।
तो मतलब एक कमरे का ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है और जो खाली कमरे हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं,
दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आप एक कमरा दो बार बेचिए या एक कमरा एक ही बार बेचोगे तो आपका 50% होगा। अगर एक कमरा आप दो बार बेचोगे आपको एग्जैक्टली 100% मोर देन दैट प्रॉफिट होगा।
भारत में मोहब्बत और उसके ऐसे इजहार की ओर रुख बदलने में समय लग सकता है, पर तब तक स्टे अंकल और उनके साथ जुड़ने वाले होटलों के लिए ये बिजनेस का अच्छा मौका रहेगा। दिव्या आर्य, BBC, मुंबई।
और अब एक खबर खेल जगत से। रियो पैरालंपिक खेलों में इस बार भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले रियो पैरालंपिक में भारत के खाते में एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक आ चुका है। राखी शर्मा ने देवेंद्र झाझरिया से बात की।
मैं मानता हूँ 2004 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मैंने गोल्ड मेडल लिया और अभी जो रियो में गोल्ड मेडल लिया, मानता हूँ मैं रियो वाला गोल्ड मेडल मेरा उससे भी बड़ा है, क्योंकि उस टाइम देवेंद्र सिर्फ 23 साल उम्र थी, आज देवेंद्र की 35 साल उम्र है और वो 23 साल वाले का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, वो भी लगभग 2 मीटर से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
देवेंद्र जी, उस पूरे माहौल के बारे में बताइए जब आपका कंपटीशन चल रहा था, फाइनल इवेंट हो रहा था, क्या कुछ चल रहा था, अपने आप को किस तरह से तैयार कर रहे थे आप?
बिल्कुल, मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि मुझे 14 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, तो मैंने उस एक्सपीरियंस से ये कंपटीशन लड़ा है और खास करके जो तीसरा थ्रो किया जिसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसमें ऐसी कोई भी सीट नहीं थी जिसपे की कोई बैठा हो, सब खड़े हो गए, जितने भी दर्शक थे सभी और भारतीय जितने भी हमारे कोचेज थे, अधिकारीगण थे, खिलाड़ी थे, सभी राष्ट्रीय ध्वज लेके खड़े थे वहां पे। उससे बड़ा नजारा कोई भी नहीं हो सकता, वो मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा नजारा है।
वो जो फाइनल इवेंट वाला जो रिकॉर्ड वाला जेवलिन उठाया था आपने फेंकने के लिए, जब छोड़ा भाला तो लग रहा था कि हाँ ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जा रहा है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने ये मेरे कंधे से जब निकला है तभी मुझे पता चल गया था कि निकल गई, क्योंकि मेरा कंधा इतना तेज लग गया था, उस पे पावर इतनी ज्यादा लग गई थी कि मैंने सोचा ना ये निकल गई अब तो।
तो देवेंद्र जी, इस जीत का सेलिब्रेशन किस तरह से हुआ आपका?
बिल्कुल, सबसे जीत का सेलिब्रेशन तो मैं ये मानता हूँ कि जब हमारा मैं मेडल सेरेमनी में गया और मुझे विक्ट्री स्टैंड पे लाया गया और मेडल पहनाया गया और उसके बाद जो राष्ट्रीय धुन बजी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी सेलिब्रेशन वही थी। पूरी पूरी इंडिया टीम थी वहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता।
देवेंद्र जी, ये पिछले 12 सालों में जेवलिन थ्रो हटा दिया गया था पैरालंपिक खेलों से, अब जब 12 साल बाद इसकी वापसी हुई तो इन 12 सालों में आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा?
मैं मानता हूँ कि 12 साल बहुत होते हैं, एक ये मान के चलो कि आपको कुंभ के मेले का इंतजार करना पड़ा है, लेकिन मैंने एक सोचा कि एक बार मैं ओलंपिक में तो जरूर खेलूंगा। 12 का वेट किया मैंने, 12 में नहीं आया, फिर मैंने कहा मैं 16 का वेट करूंगा अभी, तो मैंने वेट किया 16 का और मेरा इवेंट आ गया।
ये थे देवेंद्र झाझरिया, जिन्होंने रियो पैरालंपिक में जो है भारत के लिए जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। और अब एक बार फिर से सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। समाजवादी पार्टी में सत्ता के वर्चस्व को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जारी कलह को सुलझाने के लिए लखनऊ में आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। ब्राजील में संघीय अभियोजकों ने एक न्यायाधीश से पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनेशियो लुला डी सिल्वा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने को कहा है। अभियोजकों ने लुला को सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार का सरगना बताया है। संयुक्त राष्ट्र सचिव बान की मून ने रूस और अमेरिका से अपील की है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ये सुनिश्चित करें कि संघर्ष विराम के क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाई जा सके। दक्षिण सूडान के एक बड़े अखबार नेशन मिरर के संपादक का कहना है कि सरकार ने अखबार को बंद करने का आदेश जारी किया है क्योंकि उनके अखबार ने एक सरकार के कथित भ्रष्टाचार के पर एक लेख प्रकाशित किया था। बीबीसी समाचार।
तकनीकी पक्ष संभाला था अजीत सारथी ने। नमस्कार।